औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। पारा नंबर 9 से आयात उम्मा देखेंगे। आप में से शायद कुछ लोग ये सोचेंगे कि इससे फ़ायदा क्या होता है। देखिए, पहली बात है कि हम जब एक मौजू की आयात को एक साथ लेते हैं ना, तो फिर हमारा जहन भी जम जाता है उस पर। और ये भी एक सोचने का अंदाज है। मुझे पता है कि अभी आप में से बहुत सारे इसकी हिकमतें नहीं समझेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को रिलेट करेंगे। तो बस उस वक्त के आने तक के लिए इंतज़ार करना होगा। आज की पहली आयत सूरत अल अराफ की आयत नंबर 150 है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर से वापस आने का मंजर है, और अल्लाह ताला कहते हैं, वलम रजा मूसा इला कौमी गदबान आसिफा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में निहायत गुस्से और अफसोस की हालत में वापस आए, तो कहने लगे कि तुमने मेरे बाद बहुत ही बुरा मामला किया। क्या तुमने अपने परवरदिगार का हुक्म यानी मेरा अपने पास आना जल चाहा? ये कहा और उसके बाद क्या किया? कालब न उम्मा, उन्होंने ये कहा और शिद्दत गजब से तौरात की तख्तियां डाल दी और अपने भाई के सर के बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। यहाँ लफ्ज है कि इब्ने उम, हमारे लिए जो लफ्ज है वो यहाँ उम है, वही लफ्ज जो माँ के लिए इस्तेमाल होता है। गोया कि यहाँ अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके से और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बड़ाई के अंदाज से ये सिखा दिया कि जब एक फरीक को गुस्सा लगा हो, गुस्सा आया हो, तो वो उसको माँ के ताल्लुक से पुकारे। आज अफसोस की बात है कि उम्मत मुस्लिमा भी लड़ रही है, कहीं सिंधी पंजाबी मुहाजिर के नाम पे कभी कुछ। तो उस वक्त अगर हम सब इस बात को एहसास दिलवा दें दूसरे को कि देखो तुम हो तो पीछे से असल में एक ही हो, तो इंशाल्लाह ताला फिरका वारियत जो है वो ख़त्म हो सकती है। और साथ ही फिर इसके उन्होंने ये कह दिया, ए मेरी माँ के बेटे, लोग मुझे बहुत कमज़ोर समझते थे और करीब था कि कत्ल कर दे, तो आप ऐसा ना करें कि दुश्मन मुझ पर हंसे। तो इस यहाँ से ये भी पता चलता है कि मुसलमान जब मुसलमान से लड़ता है या उसके साथ उसका कोई मामला ऐसा होता है, तो उससे फिर दुश्मनों को खुशी होती है। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दुश्मनों की हंसी से बचाए। फिर दूसरी आयत आयत नंबर 157 है सूरत अल अराफ की, अल्लज़ीना यत्तबिउना रसूलन नबियल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम इंदहुम फित तौरात वल इंजील। हमारे प्यारे नबी के खसाइस हैं, अल्लाह के नबी की वो खूबियाँ और वो करेक्टरिस्टिक्स जो तौरात और इंजील में थे, वो बहुत ही खूबसूरत है। हम जब पारे में इस आयत पे पहुँचेंगे तो देखेंगे, लेकिन यहाँ हमारे लिए कितनी बात है, वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबी उम्मी थे पैरवी करते हैं। हमारे नबी उम्मी क्यों थे? इसलिए कि जो इल्म और दीन उनके ज़रिए से फैले वो खालिस हो। हर इंसान पर कुछ ना कुछ अपने उस्तादों का असर होता है। अगर अल्लाह के नबी सल्लम पहले से कोई दुनियावी उलूम सीख चुके होते, तो फिर तो मक्का वालों का ये इल्ज़ाम काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हो जाता कि आप कहीं से सीख पढ़ के आ गए और अब बताने लग गए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था कि वो शख्स जो कभी कहीं गया नहीं, स्कूल में नहीं गया, किसी से उसने पढ़ा नहीं, 40 साल तक वो खामोश है, और एकदम एक दिन आके कहता है कि लोग इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, तो फिर ये चीज़ इस्लाम की ऑथेंटिसिटी का जरिया बनी। फिर उसके बाद सूरत अल अराफ की आयत 158 में भी इसी तरह से अल्लाह के नबी को नबीयल उम्मीश कहा गया। तो हमें इस पे फख्र करना चाहिए कि हमारे नबी को दुनियावी उलूम से पाक रख के अल्लाह ने फितरत की हिफाजत की। आज किसी बहुत पढ़े लिखे इंसान के मुंह से आप कोई बात सुने, तो आप कहते हैं कुछ इसकी अपनी भी तो राय होगी ना, कुछ इसने भी तो इसमें शामिल किया होगा। इसके बरक्स बिल्कुल सीधे साधे भोले भाले इंसान की जुबान से कोई बात सुने, तो आप कहते हैं ये तो इतना बोला, ये कहाँ बात बनाएगा। तो अल्लाह के नबी का उम्मी होना आपकी बुराई नहीं बल्कि आपकी खूबी है। फिर इसी तरह सूरत अल अराफ की आयत 159, वमिन कौमी मूसा उम्मतुन यहदूना बिलहक्की वबिही यादिलून। और मूसा की कौम में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हक का रास्ता बताते हैं और इसी के साथ इंसाफ करते हैं। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला ने जिस कौम के अंदर जो खूबी थी उसका भी जिक्र किया। ये नहीं किया हमारी तरह कि अगर कोई बुरा लगा तो उसकी हर बात ही बुरी कह दी। फिर इसी तरह से सूरत अल अराफ की 160 आयत में, वक़त्तौना हुमुस नतई अशरत असबातन उममन। और हमने यानी इन बनी इसराइलियों को अलग अलग करके 12 कबीलों और बड़ी बड़ी जमातों में बना दिया। यहाँ से क्या पता चलता है? डिवीजन, काम करने के लिए कामों को डेलीगेट कर देना चाहिए, और लोगों को उनके काम जब पता हो, हर एक को उसकी ड्यूटी पता हो, तो काम बहुत अच्छा होता है। तो इस आयत में मुसलमानों के लिए भी एक सबक है कि आप अगर इस दुनिया में बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, तो हर काम आप अपने कंधों पे नहीं लेंगे, हर एक को उसके हिस्से का काम बांट दें। फिर इसी तरह सूरत अल अराफ की आयत 164 है, वह इस कालत उम्मतुम मिनहुम। और जब इनमें से एक जमात ने कहा, क्या तुम ऐसे लोगों को नसीहत करते हो जिनको अल्लाह हलाक करने वाला या सख्त अजाब देने वाला? तो उन्होंने कहा, इसलिए कि तुम्हारे परवरदिगार के सामने माजरत कर सकें, और अजब नहीं कि वो परहेजगारी इख्तियार करें। वाकई सख्त है जहाँ लोगों ने अल्लाह के हुक्म को बदला, मछलियों को पकड़ने के बहाने ढूंढे। एक गिरोह ऐसा था जिसने कहा कि हम ऐसा करेंगे कि लोगों को बुराई पर रोके ताकि कल अल्लाह के यहाँ हमारा उजर हो। और यही आज हमारे लिए भी अमल की बात है। जब इन आयतों पर आएंगे तो इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे, और इसके बाद फिर आयत नंबर 168 सूरत अल अराफ, वक़त्तान मिनहुम फिल अर्दी उममम मिनहुम सालिहून व मिनहुम दून सालिक, और हमने इनको जमात जमात करके मुल्क में मुंतशिर कर दिया। यानी इनमें से बास नेकुकार हैं और बास और तरह के यानी बदकार हैं। देखिए अल्लाह ताला ने सालिहून का लफ्ज यूज किया लेकिन गुनाहगारों का या फासिकून का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि क्या कहा, तू न सालिक, वो दूसरी किस्म के हैं। तो क्या पता चला, किसी की खूबी को लेकर का जिक्र हो तो नाम ले ले, लेकिन अगर किसी की कोई बुराई हो तो डायरेक्ट ऑन या डायरेक्ट उसको हिट नहीं करना चाहिए। लेकिन असल बात के वह बलऊ ना हम बिल हसनाति वसैयात इलाल्लाहुम यरजून, हमने इनको आसाइशों और तकलीफों दोनों से आजमाया ताकि वो लौटें। अब ये सबर कौन सा, आज इसके बारे में इसको डिटेल से हम देखेंगे इंशाल्लाह कि खुशियों का सबर क्या होता है और गमों का सबर या इज़्तिरारी सबर कौन सा होता है और वॉलंटियरली सबर कौन सा होता है। और आखिरी आयत सूरत अल अराफ की 181, वमिम्मन खलक ना उम्मत यहदू न बिलहक की वबिही या दिलून, और हमारी मखलूकात में से वही गिरोह हैं जो हक का रास्ता बताते हैं और इसी के साथ इंसाफ करते हैं। यानी अल्लाह को वो गिरोह बहुत अच्छा लगता है जो दूसरों को अल्लाह से जोड़े। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इन सारी आयात पे गौर व फिक्र करके हमें अपने लिए अमल की राहें मुंतखब करने वाला बना दे।